قال دونوں نے کہا اچھا اب پھر یہ دونوں کی بات آئی ہے, دونوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب اننا نخافو ہمیں ڈر ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو تبھی ایک ڈر ہوتا ہے نا مثلا کہ کوئی ایسا بڑا دشمن ہے یا کوئی سانپ ہے یا جن سے انسان کو ایک شیر ہے یا ایسی چیزیں ان سے اگر کوئی ڈر رہا ہے تو اس کے اندر یہ نہیں کہنا چاہیے لو تمہارے اندر کوئی خدا خوف ہی نہیں ہے تم اسی چیز سے ڈر رہے ہو. نہیں, ایک تبھی خوف ہے انسان کے اندر, فطرت کے اندر ہوتا ہے, تو اس میں کسی کو ایسے تانے دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ انبیاء نے کرا. ویسے موسیٰ علیہ السلام وہ جب وہ عصا جو ہے وہ سانپ بنا تو وہ پیچھے مڑ کے دوڑے ڈر کے مارے اور آگے بھی آئے گا. تو یہاں پہ بھی وہ کہہ رہے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ زیادتی کرے گا اور وہ سرکشی کرے گا, کیونکہ وہ جانتے تھے نا یہ کتنا ظالم آدمی ہے. افراط و تفریط جانتے ہیں نا, افراط کمی کرنا, تفریط بیشی کرنا, جس کو ہم کمی بیشی کہتے ہیں وہ افراط و تفریط. تو یا فروت جو ہے ایسا لفظ ہے جو دونوں اپوزٹس کے معنوں میں آتا ہے, کمی کرنے کے لیے بھی اور زیادتی کرنے لیے. تو وہ ہمارے ساتھ زیادتی کرے گا اور دیکھے نا ابھی کتنی بڑی پوزیشن بیٹھا ہوا اس کو کیا ہے, وہ تو بچے ذبح کرا کے وہ اس کو پوچھنے والا نہیں ہے, تو ان دو کو ان کا کام تمام کر دینا اس کے لیے کون سی بڑی بات تھی. وہ کسی پہ رحم نہیں کھاتا تھا, اس کے اندر رحم تھا ہی نہیں. تو بعض لوگوں کو صحیح بھی بات بتا رہے ہیں انہوں نے ان کو سمجھ آنی نہیں ہوتی, وہ اور بکھر جاتے ہیں. اور وہ بھی فرعون جیسا, وہ ذرا سی بات کسی اپنی مرضی کے خلاف برداشت نہیں کر سکتا تھا. تو ایسے سرکش کے پاس جانا ہے, اللہ ہمیں تو ڈر لگ رہا ہے ہم کیا کریں. قال لا تخافا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس ڈرو نہیں, دونوں نہ ڈرو, اننی معکما, بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. دیکھیں انی بھی ہے, انی کا بھی وہی ترجمہ ہے. میں نے آپ کو لیکن کیا بتایا تھا, جب بھی لیٹرز حروف زیادہ ہو جائیں تو معنی میں بھی زیادتی آتی, معنی بھی بڑھ جاتا ہے اور ہی تاکید ہوتی ہے کہ میں ہوں نا تمہارے ساتھ, جیسے ہم کہتے ہیں میں ہوں نا تم دونوں کے ساتھ, اسمع و ارا, میں سنتا بھی ہوں اور میں دیکھتا بھی ہوں, یعنی میں دیکھ رہا ہوں تمہیں, تم لوگ میری نظروں میں ہو, اور میں سن بھی رہا ہوں جو بھی کنورسیشن ہوگی. اور یہ اوپن اینڈڈ ہے, کس چیز کو سن رہا ہے اللہ تعالیٰ, جو فرعون کہہ رہا ہے یا جو موسیٰ علیہ السلام؟ نہیں, اوپن اینڈڈ, کچھ ساری جتنی کنورسیشن ہوگی میں اس کو سنتا بھی ہوں, میں اس کو دیکھ بھی رہا ہوں. اور آپ دیکھیں اس کے اندر یہ اسماع پہلے آیا اور دیکھنا بعد میں آیا, سننا پہلے آیا. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھ تو انسان, اب وہ دور بھی کوئی بلڈنگ ہے نا مجھے نظر آ رہی ہے, یا دور وہ دو لوگ کھڑے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن سننے کے لیے آپ کو قریب ہونا پڑتا ہے. لیکن اگر وہ کوئی دو بات کر رہے ہیں مجھے نہیں سن رہا, تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اسماؤ پہلے کہا گیا میں سنتا ہوں, یہ بتانے کے لیے کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں, فکر نہ کرنا میں بہت قریب ہوں, تو ڈرنے کی کیا ضرورت, میں سن رہا ہوں اور سننے کے لیے قرب چاہیے ہوتا ہے, تو اور دیکھ بھی رہا ہوں. اور دیکھیں نا ایک ایک بڑا بھی کسی بچے کو بھی کہہ دینا کہ چلو میں تمہارے ساتھ ہوں نا, چلو چلتے ہیں, میں خود دیکھ لیتا ہوں, چلو میں تمہارے ساتھ ہوں, تو وہ بچہ بھی شیر ہو جاتا ہے نا. تو یہ تو رب کائنات فرما رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, تو پھر کتنی بڑی ڈھارس ہے. اور نہ ڈرو کس سے, یہ نہیں فرمایا کہ فرعون سے نہ ڈرو, کسی چیز سے بھی نہ ڈرو, نہ حالات سے, نہ اس کی سزاؤں سے, نہ اس کے عذابوں سے. فَأْتِيَاهُ, پس جاؤ اس کے پاس, فَقُولَا, پھر اسے کہو, اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ, ہم اللہ کی رب تیرے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں, ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیجیں. اچھا اب یہ دیکھیں, اب آپ ذہن میں یہ ضرور رکھیے گا, بھولیے گا نہیں کہ یہ آیتیں جو اتر رہی ہیں اس وقت سنائی جا رہی ہیں مکہ میں, اس وقت جو حالات ہیں اور مسلمان سن رہے ہیں, جو بیچارے ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے, تھوڑے سے تو مسلمان تھے, اسے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ سورت کیا के बाद ही हजरत उमर मुसलमान हुए थे, वो 40th मुसलमान थे, तो 39 लोग अभी तो सिर्फ मुसलमान है इतने बड़े मुआशरे में, इसका मतलब सारी तरफ कुफर है, जिंदगी को तंग किया हुआ उन्होंने। अच्छा अब उसके अंदर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैं साथ हूं तुम्हारे, सोचे, और फिर मैं सुन भी रहा हूं और मैं देख भी रहा हूं, जो रब मूसा अलैहि सलाम को सुनता है देखता है वो बाकियों को भी तो सुनता देखता है। अल्लाह अकबर, तो तसल्ली है ना, और आने वाली दुनिया के लिए जितने इंसान आने थे सब के लिए तसल्ली, ये जब अल्लाह साथ हो जाए तो फिर डरने की क्या बात, और वो सुन भी रहा है देख भी रहा है किसके हालात क्या चल रहे हैं। देखिए हम सब में हर एक की अपनी अपनी एक कहानी है, हर एक के अपने अपने कोई हालात है जिनसे वो गुजर रहा है, कोई परेशानी, कोई किसी मसले में है, कोई किसी तरह की चीज में है, कोई किसी स्ट्रेस में है, किसी का एक गम है तो किसी का दूसरा है। और उसके अंदर जब ये पता चलता है ना कि मैं अल्लाह के रास्ते पे जम के चलती रहूं तो अल्लाह मेरे साथ है और वो मुझे देख भी रहा है सुन भी रहा है, तो दिल एकदम सुकून में आ जाता है। अल्लाह अकबर, तो उन उसको जाके कहो आप दोनों कि मैं तुम्हारे रब की तरफ से आया, ये बड़ा पूरा असर अंदाज है कि ये नहीं हमने कहा हम अपने रब की तरफ से आए हैं, रब तो हमारा भी वही है लेकिन तुम्हारे रब की तरफ से क्यों कहा, रब पहले तो कौन होता है। अब इतना आपको मैं बता चुकी हूं कि अब आपको ना ये याद हो जाना चाहिए कि रब कौन है, सिर्फ पालनहार ना कहे, पैदा करने वाला, पालने वाला, परवरिश करने वाला, निगहदाश्त करने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला, पालने में जितनी चीजें आ जाती हैं सब कुछ। माँ कोई कहती है कि मैं बच्चे को पाल रही हूं तो मैंने उसको खाना खिला दिया, अब वो बीमार होगा तो फिर थोड़ी मेरी जिम्मेदारी है, मैंने बस खाना खिलाना है, नहीं, उसकी हर जरूरत पूरी करना, चाहे उसकी कंघी करनी है, चाहे वो बीमार है तो उसको दवा खिलानी है, चाहे वो परेशान है तो उसकी परेशानी को दूर करना, चाहे उसकी और कोई जरूरत है तो उसको पूरी करना, हर तरह की, वो सब पालने में आ गया, एक लफ्ज है पालने का, उसमें सब कुछ आ गया, हर जरूरत, हर हाजत, हर बात के लिए ये एक लफ्ज है। और रब का जब माना आप करते हैं पालने वाला, तो उसमें सब चीजें ही आ जाती जो इंसान की सारी ही चीजों को पूरा करता, उसकी फिजिकल नीड्स, उसकी इमोशनल नीड्स, उसकी स्पिरिचुअल नीड्स, सबको, और रब है ना, तो वो जो पालने वाला, जो मालिक है, जो पैदा करने वाला, तेरा का तेरा उसने भेजा है, उसका ये पैगाम है, वो तेरा रब है, ताकि उसको याद आए ना कि जिसके साथ मेरा रिश्ता है वो मेरा रब है, उसने मुझे मैसेज भेजा है, वो कोई और नहीं है। और यहाँ पे रसूल आ, हालांकि हारून अलैहिस्सलाम तो नबी है और यहाँ पे रसूल कहा जा रहा है, एक तो इसके अंदर ये बात है, जब दो बातें कही जा रही हो ना तो उनमें से कोई एक को ले लिया भी जा सकता है, एक नबी है एक रसूल है, तो रसूल को कह दीजिए, जैसे वालिद है तो वालिदैन का मतलब होता है दो वालिद, तो वो तो माँ बाप के लिए आता है, तो ये दो तो नहीं है, एक माँ और एक बाप है, लेकिन वालिद को ही लेके उसका तस्निया कर दिया गया, ड्यूल कर दिया गया, ठीक है, कि बनी इसराइल को अजाब ना दो, उनको आजाद कर दो, बोला तो आदिब हूं, उनको अजाब ना देना, उनको हमारे साथ भेज दो। अब वो पता है कितने अरसे से बनी इसराइल को इसने गुलाम बनाया हुआ था, और ये कब से यूसुफ अलैहि सलाम के दौर से आके यहाँ पे मिस्र में बस गए थे, उसके बाद होते होते ये हाल आ गया था कि जो फराइना आए, फराउन तो वहां के मिस्र के बादशाहों का लकब था ना, तो जितने फराइना आए फिर आहिस्ता 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 करते करते इनकी हालत इतनी अबतर कर दी हुई थी कि यानी कोई हकूक नहीं थे, कोई किसी किस्म का कोई इंसाफ नहीं था, किसी किस्म की इनकी कोई सुनवाई नहीं थी कहीं, और बहुत ही बुरे हालात के अंदर इनको रखा हुआ था। तो इन हालात से उन्होंने कहा एक तो ये कि इनको हमारे साथ भेज दिया जाए, कद जिना का भी आयत में रब्बी का, हम निशानी भी लाए हैं, ऐसे नहीं कि हम अपनी तरफ से कोई बात कर रहे हैं, हम तेरे रब की निशानी भी लेकर आए हैं ये साबित करने के लिए कि हम सच्चे हैं। देखो ना, ऐसे ही कोई खड़ा होकर कह दे जी मुझे अल्लाह ने भेजा है और मुझे, नहीं कोई निशानी होनी चाहिए, कैसे पता चले कि ये अल्लाह की तरफ से पैगंबर आया। तुमने कहा हमारे पास निशानी भी है, सबूत भी है इसका। वसलाम आला मन इत्तबा कल हुदा, और सलाम हो उसका ऊपर जो हिदायत की पैरवी करता है। उन्होंने ये नहीं कहा अगर तेरे ऊपर सलाम हो, क्योंकि काफिर पे तो वैसे भी सलाम नहीं आप काफिर को कर सकते, उसमें पहल नहीं कर सकते आप, किसी काफरों को जाकर सलाम अलैकुम कह ये नहीं कह सकते आप। लेकिन हाँ एक जनरल बात की उन्होंने कि हर उस शख्स के ऊपर सलामती है जो हिदायत की पैरवी करता है, हिदायत के रास्ते को फॉलो करता है। यानी इसमें एक मैसेज है कि अगर तुम भी हिदायत को फॉलो करोगे ना तो तुम भी सलामत रहोगे। कहाँ पे सलामत, दुनिया में भी और आखरत में भी। तो जो हिदायत पे चलता है वो अपने लिए सेफ्टी का इंतजाम कर लेता है, अपने लिए सलामती का इंतजाम कर लेता है। तो ये एक नुस्खा है समझ में इन्ना। अच्छा एक ये भी है ना कि दुआ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है, अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना। तो ये दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह हमारे ऊपर भी किसी ऐसे को मुसल्लत ना करना जो हम पर रहम ना करे, यानी जो जालिम हो। ठीक है। अच्छा और दूसरा, हाँ एक बात और यहाँ पे रह गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गैर मुस्लिमों को खत भी भिजवाए थे ना आपने, तो उनको अस्सलाम वालेकुम नहीं लिखते थे कि तुम्हारे ऊपर सलामती हो, बल्कि यही सलाम हो आला मन इत्तबाल हुदा, उसको सलाम हो जो हिदायत की पैरवी करता है। ठीक है। इन्ना बेशक हम कद ऊ ही आई लेना, हम हमारी तरफ वही की गई है, अन्नल अदाब अलाम कज़्ज़ब व तवल्ला। हमें ये नहीं कि फिरौन के ऊपर जाके वो कहना शुरू हो जाए कि हम बड़े धूम, हमें पता है हम ये कहते हैं तेरा ये हो जाएगा तू हो जाएगा, नहीं हम पे वही की गई है। यानी हमें तो यही पैगाम अल्लाह ताला की तरफ से पहुंचाया गया जो हम तुम्हें आगे बता रहे हैं, क्या कि अजाब है उसके लिए जो झुटलाए तकजीब करे और मुंह मोड़ जाए, यानी जो इस पैगाम को नहीं मानेगा हिदायत के पैगाम को उसके लिए अजाब है। अगर उसको कहते कि तेरे लिए अजाब है तो किसी ने सुनना था, तो उसको बता दिया सलामती का रास्ता कौन सा है और अजाब का रास्ता कौन सा है, चूज तुमने खुद करना। और ये नहीं कहा कि हम ये कह रहे हैं, बल्कि ये भी अल्लाह ही की तरफ से पैगाम है। लेकिन ना कितनी हिकमत है दावत देने की ना, इसमें कितना अच्छे पॉइंट्स पता चलते हैं कि जब आप दावत का काम करें तो लोगों को पॉइंट आउट कर करके ना कहें। या तो हम बिल्कुल ही ऐसे नरम हो जाते हैं कि हारे को जन्नत के फतवे देने शुरू कर देते हैं कि तू भी जन्नती, तू भी तो बस तू जन्नत में ही गया, अभी गया तो अभी गया, और यहाँ पर उनको जहन्नमी करार दे देते हैं। तो अजाब की भी बात बताई, सलामती की भी बात बताई, इसलिए कि जब आप दावत का काम करते हैं और खास तौर पे अगर कोई बिगड़ी हुई कौम हो ना, तो सिर्फ इनामात की बात नहीं की जा सकती, इंतजार की भी जरूरत होती, वार्न करने की भी जरूरत है। जैसे अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को शुरू की जो वही थी तो उसके अंदर क्या फरमाया, कुम फअंजिर, ए नबी आप खड़े और इंतजार करें, वार्न कर दें इन लोगों को। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में पहली दफा खुलेआम तबलीग की थी तो कोहे सफा पे चढ़ गए थे और क्या फरमाया था, अगर मैं तुम्हें कहता हूं कि एक लश्कर है पीछे जो हमला करने वाला है तो तुम मेरी बात मानोगे। देखिए ना लश्कर की बात की, ये नहीं फरमाया कि इनाम लेके लोग खड़े हैं पीछे, यानी बताया कि, और या सबाहा क्या के ऐलान कराया था, या सबाहा तब कहा जाता था वहां पे उस जमाने में लोगों को जिस वक्त के कोई खतरे की बात होती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरियां नहीं दी थी उस वक्त, बताया था कि देखो ये रास्ते पे अगर चलोगे तो आगे क्या है खतरा है, यही इंतजार होता है। ये यहाँ पे भी फिरौन को भी बताया जा रहा है कि अगर तुमने तकजीब की, तुमने मुंह मोड़ा तो फिर देखना अजाब है, लेकिन डायरेक्टली नहीं कहा जा रहा, और हम अपनी तरफ से ये बात नहीं तुम्हें कह रहे कि वो हमारे पर गुस्से होना शुरू हो जाए। قال فمن ربكما يا موسى, आगे से देखे ना फिरौन की वो बात तो देखें कि बजाय इसके कि कोई इस बात का जवाब देता, कहता है तुम्हारा दोनों का रब कौन है मूसा, खास तौर पर मूसा अलैहि सलाम से बात कर रहा है। कौला रब्बुन अल्लज़ी आता कुल्ल शैइन खल्कहू, हमारा रब वो है जिसने हर चीज को उसकी खलकत दी, तखलीक दी, उसकी सूरत दी। ये एक माना है ये कि हमारा रब वो है जिसने हर चीज को अता की, उसकी क्रिएशन, उसकी एग्जिस्टेंस, उसकी शक्लो सूरत ये उसने अता की। दूसरा माना है हमारा रब वो है जिसने हर शय अता की अपनी मखलूक को, अपनी खल्क को हर चीज अता की। अल्लदी आता कुल्ला शय, अता की हर चीज खल्का हो अपनी मखलूक को, अपनी क्रिएशन को हर चीज अता की। और वाकई हर चीज अल्लाह ने ही अता की है, चाहे वो हवा पानी से लेके, इस जिस्म से लेके, और जितनी हमारी जरूरियात अल्लाह ने ही अता की। और दूसरा भी माना यही कि उसने हर चीज को अता की उसकी तखलीक। आज हम जो कुछ भी हैं, जो हमारे नाक, नक्शा, हुलिया, हमारे आजा, हमारी एग्जिस्टेंस, हमारा वजूद, अल्लाह ताला की वजह से हर चीज उसने, इस वजूद की उसने अता की है। सुम्मा, फिर सुम्मा जब आता है तो तराखी के लिए आता है, यानी डिले, यानी वजूद देने के बाद, हर चीज को क्रिएट करने के बाद, सुम्मा हदा, फिर हिदायत भी दी। एक हिदायत वो होती है जिसको तकवीनी कहते, ता कैफ वाव या नून या, ठीक है, तकवीनी, वो वाली हिदायत है कि जो आप देखें कि बच्चे को दूध पीना सिखाना, या बच्चा बच्चे को भूख लगी है तो उसने रोना, या उसको कोई तकलीफ है तो वो रोने लगता है, उसको रोना किसने सिखाया, उसको दूध पीना किसने सिखाया, शेर को शिकार करना किसने सिखाया, परिंदों को उड़ना किसने सिखाया, कौन सी एकेडमी में वो ये ट्रेनिंग लेते हैं, कौन से लेसन ले रहे हैं वो, मछली को तैरना किसने सिखाया, हनी बी को किसने सिखाया कि वो शहद बनाए, उसने अपना छत्ता, इतना हमने सूरह नहल में पढ़ चुके हैं कि कैसे वो अपना छत्ता बनाती, वो इतना परफेक्ट छत्ता उसको बनाना किसने सिखाया। ये हिदायत तकवीनी है, ठीक है। अब शेर को क्या पता कि मैंने शिकार ही करना है तो मैंने गोश्त ही खाना है, वो घास क्यों नहीं खा लेता, ये तकवीनी हिदायत है, अल्लाह ने डाली है हर एक के अंदर, नेचुरल उसका जो बिहेवियर है। और एक हिदायत वो है जो अल्लाह ताला की तरफ से पैगंबरों के जरिए आती है, ठीक है, वो भी हिदायत है, जिसमें इंसान को बताया गया कि तेरे वजूद का मकसद क्या है, तो क्यों दुनिया में आया। तो एक तकवीनी हिदायत तो हर एक को मिली है, दूसरी हिदायत हर कोई नहीं पाता, ठीक है। तो वो है हमारा रब, तो रब का तारुफ उन्होंने कैसे कराया, उन्हें ये नहीं कहा कौला रब्बुन अल्लाह, हमारा रब अल्लाह है, ये नहीं कहा, वरना तो उसको समझ ही नहीं आनी थी कौन अल्लाह, फिर उसने ये कहना था वो हमारा रब वो है जिसने हर चीज, कुल्ला शई, इनमें कोई चीज बाहर रही ही नहीं। अब चरिंद परिंद से लेके, जानवरों से लेके, दरिंदों से लेके, इंसान और जिन्नात, हर चीज को उसकी तखलीक उसने दी है, और फिर वो सिर्फ खालिक ही नहीं है, हादी भी वही है, ठीक है। हर चीज को उसका मकसद जिंदगी बताया है, हर चीज को उसकी, उसको चलना सिखाया, दौड़ना सिखाया, उसको खाना सिखाया, उसको अपनी जरूरत पूरी करनी सिखाई, और इंसान को भी बताया हर चीज। देखें, इवन सूरज, चांद, सितारे, कहने को वो नॉन लिविंग थिंग्स है, सिर्फ ये ना सोचेंगे लिविंग थिंग्स को सिखाया, जानदारों को नहीं, ये बेजान चीजें जिनको हम समझते हैं बेजान, सूरज चांद वगैरह, इनको भी अल्लाह ने हिदायत दी, कब निकलना है, कब चढ़ना है, कब क्या किधर पहुंचना है, किस वक्त किस स्पीड से चलना है, किस मदार में चलना है। तो कितनी बड़ी, अब कौन दुनिया में ये दावा कर सकता है इस चीज का कि मैंने ही सब कुछ क्रिएट किया है, तखलीक किया, और मैं ही सबकी रहनुमाई कर रहा हूं। अब कोई हंसेगा ये सुन के कि भी शेर को भी इसने ही दौड़ना सिखाया, तो शेर से भी इतना डरता होगा, इसने परिंदों को उड़ना सिखाया, वो खुद तो उसको उड़ना आया नहीं, इसने कैसे सिखा दिया। तो कोई कोई दावा कर ही नहीं सकता ना, ये यहाँ पे जाके इंसान बेबस हो जाता है, फिर उसको मानना पड़ता है कि नहीं, एक वो रब है जिसने ये सब किया, ठीक है, इसका कौन जवाब देगा बताए, कौन कोई कह सकता है नहीं हाँ हमने किया, या मेरे खुदा ने किए जिसको मैं खुदा मानता हूं, कौन सा भूत है, कौन से पैगंबर है, कौन सा फरिश्ता है, कौन सी को कि जिनको भी कोई पूजता है, बताएं, जिसको भी खुदाई का दावेदार, जो भी खुदाई का दावा करता है, उनमें से कौन है जो ये सब कर सकता है? इवन फिरौन भी नहीं कह सकता था कि मैंने सब कुछ बनाया। काला फमा बाल कुरून अल्ला। अच्छा फिर उनका क्या मामला, ये फिरौन कहता है उनका फिर क्या मामला जो पिछली कौमें गुजरी हैं, यानी कितना ट्रिकी क्वेश्चन उसने किया। और ये अक्सर जो मुशरिकीन होते हैं वो इस तरह की बात करते हैं, अच्छा फिर हमारे जो पिछले गुजरे में बताओ उनका क्या हाल है, तुम तो कह रहे हो कि नलादा वाला मन कर दबा वाता वाला, उनके लिए तो अजाब है जो कि झुटलाए और मुंह मोड़ जाए, तो वो तो हमारे जो पिछले चले गए वो कहाँ है फिर बताओ अब इस वक्त, वो किधर, वो क्या अजाब में है? मतलब अगर कहेगा अजाब में है तो फिर मैं सबको कहूंगा देखो देखो जी, इसने तो हमारे अबाऊ अजदाद को भी कह दिया कि वो अजाब में पड़े हैं, सारे उनके मुखालिफ हो जाएंगे। अगर वो कहते हैं जन्नत में है तो ये तो झूठ है, वो मुशरिक थे, वो कैसे जन्नत में चले गए? ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चन करके ना शरारत करते हैं और दूसरे को फंसाने की कोशिश करते हैं। आज भी ये लोग कहते हैं आप हमें तो बता रहे हैं, ठीक है आप कहते हैं कि अगर शिर्क के ऊपर मर गए तो जहन्नम है, तो हमारे तो पेरेंट्स यही करते थे, तो क्या वो जहन्नम में चले गए? अब बंदा आगे से क्या जवाब दे, कुछ सोचे? तो ये बड़ा जबरदस्त जवाब है जो हमें भी सीखना चाहिए कि किस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम ने इस ट्रिकी क्वेश्चन को हैंडल किया। कौला इल्मुहा इंदा रब्बी फी किताब। मेरा काम ये थोड़ी है कि मैं बताऊंगी कौन जन्नत में गया, कौन जहन्नम में गया, अजाब में है कि सलामती में है कि क्या है, क्योंकि पीछे उन्होंने बताया है ना आयत नंबर 47-48 में बताया कि कौन सलामत रहेगा, कौन अजाब में होगा। तो अब बताएं जरा वो सलामत है कि वो अजाब में है? तो नहीं, मैं ये बताने के लिए तो नहीं आया, इसका इल्म तो मेरे रब के पास है और एक किताब में मौजूद है, के लोहे महफूज में मौजूद है, अल्लाह के हाँ एक किताब में सब कुछ लिखा हुआ। ठीक है, तो मैं ये जवाब देने नहीं आया। तो ये भी हम यही कह सकते हैं कि वल्लाह हुआ आलम, अल्लाह को पता है, मुझे क्या पता आपके बड़े किधर हैं। तो एक तो बात को देखें सही से दूसरी तरीके के ऊपर मोड़ दिया, दूसरे ये कि झूठ भी नहीं है इसके अंदर। तो शातिराना उसका सवाल था ना फंसाने का, लेकिन और इसके दो ही जवाब हो सकते थे, सलामती या अजाब। तो देखिए कितना अच्छा उन्होंने जवाब दिया, ला युदिल्लु रब्बी वला यंसा, मेरा रब तो भूलता भी नहीं है, गलती भी नहीं करता, तो फिक्र ना करो। जो उन्होंने मतलब वो जहां पे भी होंगे, मेरा रब कहीं पे भी किसी के भी अमल को ना गलती की है, ना गलती कर सकता है वो, और ना वो भूल सकता है, तो उनको भी ना भूला ना उनके लिए कोई गलत फैसला करेगा, किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया जाएगा। अल्लज़ी जअला लकुमुल अर्ज़ मिहादा महदा, सॉरी मिहाद तो वहां पे 30वें पारे में, जिसने जमीन को बना दिया बिछोना, जोना ने हमवार कर दिया इसको, फ्लैट कर दिया कि इंसान इसके ऊपर आराम से रह सकता है, इसको रहने के काबिल बना दिया। आपको पता दूसरे सैयारे कोई भी ऐसा नहीं है जहां पे इंसान की लाइफ बढ़ सके, वो रह सके, तो या तो उनके मौसम ऐसे हैं या उनके टेम्परेचर्स ऐसे हैं या उनमें हवा नहीं है या पानी का ट्रेस नहीं है। तो ये वाला बात जो है ना, ये आयत 53 और 54, बाज मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये अल्लाह ताला का कलाम है जो बीच में अल्लाह ताला ने फरमाया, बाज कहते हैं मूसा अलैह सलाम का ही पैगाम का हिस्सा है। तो पहले बता दिया मूसा अलैह सलाम ने, मेरा रब ना भटकता है ना भूलता है, क्योंकि इसका ताल्लुक तो जवाब से उससे नहीं था जो उसने पूछा था, लेकिन फिर भी उसको तसल्ली दिला दी कि तुम इसकी फिक्र ना करो जो पिछले गुजर गए। और फिर अल्लाह ताला बता रहा है कि अल्लाह ताला तो वो जात है, या मूसा अलैहि सलाम बता रहे हैं कि अल्लाह तो वो जात है जिस रब के बारे में तुम पूछ रहे हो, वो जात है जिसने इस जमीन को जिस पे हमारा सर्वाइवल है इसको हमारे लिए बिछाया, वसलक लकुम फीहा सुबुला, और इसमें रास्ते बना दिए। अच्छा अगर हम अल्लदी जाला जाला कर दें तो क्या हो जाएगा, दोनों ने बनाया, अगर लगा दिया, अगर जरा सा भी लंबा नाम को कर दिया। इसी से पता चलता है ना आपको, जब कहा जाता है तजवीद के ऊपर गौर करें, तजवीद को सीखें, तो इसीलिए कि अल्लाह ना करे कि माना ही बदल गया तो एक शिर्क का माना हो जाएगा कि उन दोनों ने बनाया है जमीन को, एक ने नहीं बनाया। फिर तो फिर अल्लाह ना करे कि हम किसी मतलब अपनी ना दानिस्ता तौर पे, इंटेंशनली तो कोई नहीं करता, लेकिन अल्लाह ना करे कि ऐसे हमसे अन इंटेंशनली कहीं ऐसी गलती हो जाए जिसमें उल्टा गुनाह हो। तो उसने बनाए तुम्हारे लिए जमीन में रास्ते। आपको पता है जमीन में भी रास्ते होना ये भी अल्लाह ताला की निशानी है, जिसको अल्लाह ताला कुरान पाक में बयान फरमाता है, क्योंकि जमीन के रास्ते इंसान को एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करते हैं। अगर जमीन ऐसे होती कि इसमें रास्ते ही ना होते, कहीं रास्ते बन ही ना सकते, पहाड़ों का ऐसा सिलसिला है उसमें से रास्ते नहीं बन सकते, फिर आगे पानी है उसमें से भी रास्ता नहीं बन सकता, फिर कहीं ऐसी जमीन है कि जिससे रास्ता ही नहीं बन सकता, गदली जमीन है, पैर धंस जाते हैं बीच में, ऐसे होता तो कैसे इंसान एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता, कहीं जा ना सकता, सब निजाम खत्म हो जाता। लेकिन हमें चूंकि कभी ऐसा हुआ नहीं, हमने देखा ही नहीं कभी, तो हमें एहसास ही नहीं कि रास्ते भी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है, ये भी एक नेमत है। हम गाड़ी में बैठते हैं, चलो ये शुक्र कर लेते हैं हमारे पास गाड़ी है, और चलो ये शुक्र कर लेते हैं कि हमने एक दुआ पढ़ ली सवारी की, और बड़ा अच्छा मौसम है या सीनरी बड़ी खूबसूरत है, लेकिन ये रास्ता अल्लाह ने बनाया, सला का उसने बनाए, पिरोने के लिए आता है, वैसे वैसे पिरो दिए जमीन में रास्ते, तो ये नेमत है। अगर जैसे कोविड से पहले हमें कई चीजों का पता ही नहीं था कि ये भी नेमते हैं ना, अल्लाह ना करे कोई भी नेमत छिने तो हमें एहसास हो, इस तरह हमें रास्तों का भी नहीं एहसास है कि ये भी कोई नेमत है। अनज़ल मिन अस्समा इमाअन, और नाजिल किया आसमान से पानी, वो रब है, रब की का इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है कि तुम पूछ रहे हो ना तुम्हारा रब कौन है, तो वो रब है। फिर देखें इसको इत्तेफात कहते हैं, ते के साथ इत्तेफात कहते हैं कि गायब से मुतकल्लिम का सीगा आ जाए, यानी अभी गायब का सीगा वो है, वो है। फिर अखरजना, फअखरजना हमने निकाली भी अजवाजम मिन नबातिन शत्ता, और ये अरबों का एक तरीका होता था, उनकी फसाहत और बलागत का हिस्सा था कि इस तरह से पहले थर्ड पर्सन में बात की जाए फिर फर्स्ट पर्सन में बात आ गई, वो ऐसा वो ऐसा, फिर उसके बाद मैं या हम, ठीक है। क्योंकि कुरान पाक जो है ना वो एक तकरीर की फॉर्म में है, तहरीर नहीं है, बाद में लिखा तो बाद में गया, लेकिन एक खिताबत का इसका अंदाज है, खिताब किया जा रहा है, तकरीर की जा रही है, उसमें ऐसे सीगे बदलते हैं। तो हमने निकाली इसमें कई अकसाम, मुख्तलिफ पौधों में से, मुख्तलिफ नबातात से, आप देखें कि एक एक नबातात में भी कितनी कितनी फॉर्म्स हैं। एक खजूर को ले लें, खजूर मतलब खजूर डिफरेंट चीज है, अंगूर डिफरेंट चीज है, सेब डिफरेंट चीज है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट नबातात है, लेकिन उनके अंदर भी अजवाज, उसमें भी कई किस्में ऐसी हैं। अब खजूर की कितनी किस्में हैं, कोई किसी किस्म की है, कोई किसी किस्म की है, जब आप देखते हैं खजूरों के ढेर लगे हुए, जब आप मक्का मदीना जाते हैं तो आप हैरान होते हैं कि इतनी किस्में हैं खजूरों की। कुलू वराउ अनआमकुम, तो ये तो एक चीज है, खैर और भी सारी चीजों के अंदर आप अंदाजा कर लेंगे कितनी कितनी अकसाम है, कितने कितने जायके हैं। खाओ यानी इंसान के लिए, खाने के लिए अल्लाह ताला ने पैदा किया, कितनी बड़ी उस रब की मेहरबानी है, तरह तरह की चीजें उगा दी उसके लिए। वराउ अनआमकुम, और चराओ अपने मवेशियों को, सिर्फ तुम्हारे लिए ही इंतजाम नहीं किया इस जमीन में, तुम्हारे जो भी जानवर हैं उनके लिए भी इंतजाम फरमाया कि वो भी चरें। इन फी ज़ालिका लआयातिन लिउलिन्नुहा, इसके अंदर निशानियां हैं अक्ल वालों के लिए, जिसमें थोड़ी समझ होगी, कोई अक्ल होगी ना, बड़ी कुछ इससे हासिल कर लेगा इन चीजों को देख के। असल में ये भी उस्ताद है, ये जो निशानियां है ना इधर कायनात में बिखरी हुई है, चाहे वो कोई फल फ्रूट है, चाहे वो कोई दरख्त है, चाहे फूल है, ये सब आसमान और जमीन है, ये सब हमें कुछ सिखाने के लिए है, ये अल्लाह की निशानी है, ये उसकी तरफ रहनुमाई करती है, लेकिन अगर इंसान अकल से काम ले तो फिर ना, अगर इंसान इनके ऊपर कभी सोचे तो सही। खाते हैं पीते हैं, रोज खाते पीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कभी इस नजर से देखा कि वो फल या वो नबातात, वो पौधे, वो या वो अनाज हमें अल्लाह तक पहुंचा दे, वो हमें याद आ जाए। खाने से तो पहले ना बिस्मिल्लाह याद आती है, ना उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह याद आती है। गौर और फिक्र क्या करेंगे। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुने।
اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى